हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Mahanidhi Maharaj ki। So परम पूज्य महानिधि महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, सन्यासी हैं और गुरु हैं, और उन्होंने करीब करीब 15 से 20 साल राधा कुंड के किनारे में रहकर सारे शास्त्रों का बड़ा गहरा अध्ययन किया है, और उनकी कई किताबें श्री कृष्ण बलराम मंदिर में उपलब्ध हैं। द आर्ट ऑफ चैंटिंग, द आर्ट ऑफ गायत्री, अप्रिशिएटिंग नवद्वीप धाम, अप्रिशिएटिंग वृंदावन धाम, अप्रिशिएटिंग जगन्नाथपुरी धाम, ऐसे उनका बहुत गहरा ग्रंथों का अध्ययन है, और उस ग्रंथों के अध्ययन के ऊपर उनके हृदय में बहुत ही उत्कट प्रेम है कृष्ण भगवान राधा रानी के लिए। और रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो राधा कुंड के किनारे में निवास है। हमारे जीवन की भक्ति की और सेवा की परिपूर्णता का लक्षण है कि हमें राधा कुंड में कुछ समय वास मिलता है, निवास मिलता है। तो महानिधि महाराज जी पिछले 15 से 20 साल से राधा कुंड धाम में निवास कर रहे हैं और वहीं पर भजन करते हैं और प्रचार भी करते हैं, और कई सालों से वो हम पर बड़ा स्नेह रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं, हम उनके बहुत ऋणी हैं। और जब भी कोई कथा में कोई वरिष्ठ भक्त आता है तो कथा में विश्राम करके उनका स्वागत करना चाहिए, शास्त्र का प्रमाण है ये। एक बार कथा चल रही थी रोमहर्षण सूत की, उसमें स्वयं बलराम जी आए, फिर भी रोमहर्षण सूत जो है वो बैठे रहे, कथा करते रहे। तो बलराम जी ने समझा कि इस कथाकार को शिष्टाचार पता नहीं है और ये हजारों लोगों को कथा कर रहा है और अपने उदाहरण से हजार लोगों को वैसी प्रेरणा दे रहा है जो अयोग्य है। तो बलराम जी ने एक तिनका उठाया घास का और उसके गले को स्पर्श करके उसका वध कर दिया और कथाकार की मृत्यु हो गई। तो सब कथा आप समझ सकते ना कि मेरे मन में क्या विचार है, मुझे जीना है इसलिए मैं ये सब करता हूँ। तो सारे ऑडियंस जो है वो संत लोग थे, वो बहुत परेशान हो गए, बलराम जी आप तो भगवान हैं, आपने तो हमारे व्यास देव को ही खत्म कर दिया, तो आगे प्रचार कौन करेगा, कैसे करेगा। तो उनके पुत्र सूत गोस्वामी थे, वो भी उसमें उपलब्ध थे उस कथा में। तो बलराम जी ने कहा कि आप चाहे तो उनको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन बलराम जी को लोगों ने कहा कि नहीं, आपने जो किया है वो परिपूर्ण है, आपका जो कार्य है वो दिव्य है, परिपूर्ण है, वो गलत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र के रूप में जीवित रहता है, तो मैं जितनी भी आयु सोमर्षण सूत की थी वो सब आयु अभी उसके पुत्र में ट्रांसफर करता हूँ और उसको पूरी कृपा और अनुभूति और ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वो अपने पिता का कार्य आगे बढ़ा सकता है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि जब हमारे वरिष्ठ वैष्णव कथा में समय में आते हैं तो व्यासपीठ से उठकर उनका स्वागत करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए, मृत्यु के भय से नहीं, शिष्टाचार के वजह से। शिष्टाचार ही बहुत मीठा है, शिष्टाचार को हम फॉलो कर सकते हैं भय की तरह, बिकॉज ऑफ फियर वी कैन फॉलो एटिकेट, और वी कैन फॉलो एटिकेट आउट ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड बेटर टू फॉलो द एटिकेट आउट ऑफ लव रादर देन फियर। एनीवेज हम क्या कह रहे थे, हाँ, तो राधा रानी को जब प्राप्त किया ऋषभानु महाराज ने तो ये खबर मुखारा गांव में पहुंच गई। मुखाराई एक गांव है, मुखारा देवी उनका नाम है। जब मुखारा गांव में ये खबर पहुंच गई तो मुखारा देवी इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, क्योंकि ऋषभानु महाराज और कीर्ति मैया की बड़ी उम्र हो गई थी, उनको पालिका पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उसी समय आनंद से उल्लासित होकर मुखारा देवी ने वहां पर पड़ा हुआ एक बैलगाड़ी का चक्र उठाया, उस पर दीपक लगाए, बहुत सुंदर घी के, हाँ, हर एक आरी पे, एवरी स्पोक वॉज डेकोरेटेड विथ घी लैम्प्स, और बीच में उसको उठाकर वो चक्र की तरह गोल गोल घुमाने लगी, और गोल घुमा के उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य किया। आज भी वो नृत्य ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है, जो राधाअष्टमी के दिन ही मुखारा गांव में होता है, उसको कहते हैं चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य ये ब्रज का एक सांस्कृतिक धरोहर है, इट्स अ कल्चरल लेगेसी ऑफ ब्रज भूमि, द डांस ऑफ मुखारा देवी विद द व्हील विद द लैम्प्स ऑफ लव एंड डिवोशन स्वर्लिंग अराउंड एंड डांसिंग विद दैट। सो शी एक्सप्रेस्ड हर जॉय बाय डांसिंग विद दिस चक्र। तो ये मुखारा देवी का ओके तो अभी ये सूर्य कुंड जो है राधा रानी और कृष्ण भगवान के लीला में ऐसा वर्णन आता है कि वो अष्टयाम लीला है। अष्ट एक याम 3 घंटे का होता है, और एक दिन जो है 8 यामों में विभाजित है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, फिर दोपहर 12 के बाद 3, 3 से 6, फिर शाम को 6 से 9, 9 से 12, इस तरह से उसको पूर्वान्न, मध्यान्न, अपराह्न ऐसे कहते हैं। और हर एक मध्यान्ह पूर्वान्न में 3 याम होते हैं, अष्ट प्रहर अष्टयाम। तो ऐसे अलग अलग समय पर भगवान की अलग अलग लीला होती है, एक एक याम में अलग अलग भाव रहता है। रात के समय गोपियों के मिलते हैं, दिन में भी मिलते हैं, लेकिन दिन में गौचारण करते हैं और मध्यान्ह में यहाँ रहते हैं, 3 बजे वहाँ रहते हैं, सुबह वहाँ रहते हैं, इस तरह से उनका लीला चलती रहती है। और कभी कभी 2-2, 3-3 जगह भी होते हैं वो, जैसे जब रात को शयन का समय आता है तो मैया लोरी गाती है, और मैया के गोद में नंद भवन में कृष्ण भगवान शयन करते हैं, उसी समय उनके शरीर से गोपी कृष्ण जो है वो निकल जाता है और वो रस कुंजों में प्रवेश करते हैं गोपियों के साथ में। तो एक है यशोदा कृष्ण जो शयन कर रहे हैं शांति से माँ की गोद में, और एक है गोपी कृष्ण, वो वहाँ से शरीर से निकलते हैं और रात भर रासलीला रचाते हैं, फिर सुबह आते हैं और यशोदा कृष्ण में विलीन हो जाते हैं, फिर मैया उनको जगाती हैं, फिर वो उठते हैं, माखन खाते हैं, स्नान करते हैं, फिर लकुड़ी लेकर वस्त्र लेकर श्रृंगार करके गौचारण करने चले जाते हैं। तो सूर्य कुंड जो है, आप लोगों को पता होगा कि भगवान और राधा रानी का लौकिक दृष्टि से विवाह नहीं हुआ, लेकिन दिव्य दृष्टि से उनका विवाह हुआ है प्रत्यक्ष। एक जगह है भांडीरवट नाम की, भांडीर वन, उस भांडीर वन में छोटे छोटे से बालक थे रेंगते हुए राधा और कृष्ण। भांडीर वन में जब मिले, नंद बाबा के गोद में थे कृष्ण भगवान, तो बहुत तूफान आया, आंधी आई, तो राधा रानी के हाथ में भगवान को दे दिया नंद बाबा ने, और वो चले गए। और नंद बाबा के हाथ से कृष्ण को लेकर राधा और राधा बहुत गहरे जंगल में चली गई, वन में प्रवेश किया उसने, और एक विशाल वट वृक्ष के पास में आए। वो इतना विशाल, अभी भी वो इतना विशाल है कि जैसे मैं बैठा हूँ तो यहाँ से लेकर वो कुंड के बीच में और यहाँ से लेकर वो मंदिर के भी पीछे, इतना बड़ा विशाल पेड़ है वो, आप यकीन नहीं कर सकते इतना विशाल है। तो वहाँ पहुँचते ही राधा कृष्ण जो है वो 16 साल के बन गए, दे बिकेम 16 ईयर ओल्ड यूथ, किशोर अवस्था। और तत्काल वहां पर बृहस्पति, ब्रह्मा जी, वरुण देव, इंद्रदेव, सारे देवता प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने पौरोहित्य स्वीकार किया, ब्रह्मा जी बिकेम द प्रीस्ट, और यज्ञ स्थली बनाई गई, और राधा और कृष्ण के बहुत ही सुंदर दिव्य तरीके से विवाह किया गया। उसमें भगवान ने राधा रानी की मांग में सिंदूर भरी, सिंदूर दान किया, और बहुत देर तक विवाह होने के पश्चात जुगल जोड़ी ने भांडीरवन में विहार किया, आनंद लिया, फिर लौट के आए, फिर दोबारा रेंगते हुए बालक बने, टॉडलर्स, और फिर अपने घर चले गए। नंद बाबा को राधा रानी ने सौंप दिया बालक को, और गोद में बालक को लेके बालक नंद भवन में चले गए। ये कथा जो है गर्ग संहिता में आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आती है, लेकिन ये किसी को पता नहीं था, केवल राधा कृष्ण ये दोनों ब्रज से थे, बाकी सब बाहर के थे, इसलिए किसी ने ना किसी को बताया, ना कृष्ण भगवान राधा रानी ने किसी को बताया। तो लौकिक दृष्टि से वो हमेशा प्रिया प्रीतम थे, पति पत्नी नहीं थे, जब समय योग्य आया तो सारे गोपियों का विवाह किया गया। आपने सुना होगा ना कि एक बार विवाह की बात चली थी तो पूर्णमासी माता ने उसको कैंसिल कर दिया, बोला अच्छा माहौल नहीं है, बोलते रात आकाश के तारे जो है वो सही जगह पर नहीं है, अभी विवाह करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए विवाह का प्लान हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। सब गोपियां दुखी हुई थी, उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था और गोपियों को भी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। तो कात्यायनी व्रत के बाद में भगवान ने रास रचाया और उसके बाद में ब्रह्म सम्मोहन लीला हुई। ब्रह्मा ने बचरों को और ग्वाल बालों को चुराया और एक साल तक भगवान ने सारे ग्वाल बालों के रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया। सारे बछड़े भी भगवान बन गए, सारे ग्वाल बाल भगवान बन गए और स्वयं भी भगवान। और बलराम जी का उस दिन बर्थडे था तो बलराम जी घर में रहे थे तो बलराम जी का अपहरण नहीं हुआ, ही वॉज नॉट किडनैप बाय ब्रह्मा, ही वॉज एट होम डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मिन्स। तो बलराम जी और कृष्ण और सारे ग्वाल बाल और बछड़े भी कृष्ण के रूप में, मतलब स्वयं कृष्ण है लेकिन ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में है। तो एक साल विहार करते रहे, किसी को पता नहीं, मैयाओं को लग रहा है कि हमारा ही पुत्र है, लेकिन क्यों हमारे पुत्र से भी अधिक प्रेम का अनुभव हो रहा है उनको, वो पता नहीं है उनको। जैसे कृष्ण पर प्रेम करते हैं वो अपने बालक से भी अधिक प्रेम कृष्ण पर करते हैं, निस्वार्थ, हाँ कोई उसमें किंतु नहीं है मन में। उनको भी पता नहीं चल रहा है कि हमको भी अपने बालकों के प्रति इतना ज्यादा प्रेम क्यों लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है, उसका आनंद ले रहे वो। और गायों को भी देख रहे हैं कि गाय अपने बछड़ों को इतना ज्यादा दुलार रही है, इतना चाट रही है, इतना ज्यादा प्रेम कर रही है। वह बलराम जी ने देखा कि गोवर्धन पर्वत से नीचे बछड़े चल रहे थे, कृष्ण बलराम दोनों चला रहे थे, और ऊपर पहाड़ पर बड़े ग्वाल बाल बड़े गायों बैलों को चला रहे थे। तो अचानक जो गायें चल रही थी ऊपर उनको अपने बछड़े नीचे नजर आए जो स्वयं कृष्ण थे, तो वो ग्वाल बालों को छोड़कर ऐसे भागने लगे डाउनहिल, हाँ गिर सकता है ना आदमी, तो चार चार खुरों को लेकर दौड़ रहे हैं पूंछ ऊपर उठाकर। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि मत जाओ गिर जाएंगे, गायों को रोकने का प्रयास कर रहे, लेकिन वो इतनी अनियंत्रित हो गई थी पूरा पहाड़ उतरकर भाग, हवा की गति से भाग गई और अपने बालकों को बछड़ों को चाटने लगी और दूध पिलाने लगी, उनके थनों से दूध बहने लगा। तो उस काल में जिस काल में सारे बछड़े और सारे ग्वाल बाल स्वयं कृष्ण थे, तभी सारी गोपियों का गोपों के साथ में विवाह हो गया, क्योंकि उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था ना कि कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान ने अपनी लीला से सभी ग्वाल बालों का विवाह करवाया गोपियों के साथ में। तो राधा रानी का विवाह उस समय अभिमन्यु के साथ में हुआ। अभिमन्यु में एक अच्छा सुंदर गोप है, उनकी माता का नाम जटिला है, उसकी बहन का नाम कुटिला है, जटिल और कुटिल, जब स्त्री होती है तो जटिला और कुटिला हो जाती है, लेकिन जटिल और कुटिल भी होना यहाँ पर केवल भगवान के आनंद के लिए है। यहाँ का हर भाव जो है एक द्वेष और ईर्ष्या छोड़कर हर यहाँ का भाव कृष्ण की सेवा में। यहाँ की हम लोग गुरु महाराज बताते हैं कि जो छह विकार हैं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, से मत्सर द्वेष ईर्ष्या को छोड़कर सारे पांचों विकार भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान के लिए हम काम भावना से व्याकुल हो सकते हैं, भगवान के लिए जैसे हनुमान ने क्रोध किया वैसे क्रोध कर सकते हैं, भगवान की भक्ति का लोभ रख सकते हैं, भगवान के भक्ति के मद में चूर हो सकते हैं। और जैसे गोपियां और नंद बाबा यशोदा ये भी मोह में रहते हैं, ये समझते हैं कि हमारा पुत्र है लेकिन है तो भगवान वो, लेकिन जानते नहीं वो, तो ऐसा मोह भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन मत्सर जो है वो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, उसको निकाल के फेंक देना होगा। तो जटिला कुटिला का एक ही सेवा था कि हमारी जो पुत्र की कन्या वधू है राधा रानी उसको कृष्ण से नहीं मिलाया जाए। अब उनके गार्ड सब जगह लगे थे, कहीं ये कृष्ण से न मिलेगी, कहीं वो काला कलूटा इसे मिलने न आ जाए। तो इस तरह से वो हर जगह पर उसके पीछे 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 आती थी कि कहाँ जा रही है, जमुना जी में जल भरने के बहाने गई है और कहीं उसने डिटूर करके श्याम सुंदर को मिलने गई है, कहीं और किसी बहाने गाय का दूध निकालने गई है तो कह रहे अरे बछड़ा छूट गया तो बछड़े को ढूंढने जा रही हूँ, तो वो कई बहाने होते हैं यहाँ पर। हाँ, अरे गोबर लाने जा रही हूँ, अरे कंडे ले जा रही लाने जा रही हूँ, अरे यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, लेकिन जाना है केवल कृष्ण को मिलने के लिए, ये उनको पता था। और कृष्ण भी कभी कभी बहुत भेष बदल के, कभी श्यामा सखी, कभी चूड़ी वाली, कभी वैदनी, कभी ब्रह्मचारिणी, कभी ब्रह्मचारी, कभी ज्योतिषी, हाँ कभी मालिनी, कभी धाड़िनी, कभी भंगिन, कभी ये कभी वो, ऐसे करके घर में घुसते रहते उनके। तो ये जावट की लीला है। जावट एक नंदगांव के आगे हैं, कोसी के रास्ते पर है, और ये भी वृंदावन में आता है जावट। और जावट में राधा रानी का ससुराल है, और वहां पर बहुत ही चटपटी लीलाएं होती रहती है। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह था कि राधा रानी की सासू जी जटिला और ननंदी जी कुटिला देवी, ये उनको हर जगह जाने से रोकती थी, लेकिन ये एक ही ऐसी जगह है सूर्यकंड जहाँ पर उनको कोई रोकने का प्लान नहीं था उनका। वो सोचती यहाँ पर कैसे श्याम सुंदर आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वो निस्संकोच उनको भेजा करते थे। और रविवार के दिन यहाँ पर सूर्य नारायण को पूजने के बहाने राधा रानी अपनी सखियों को लेकर यहाँ आती थी और कृष्ण से बड़े लंबे समय तक मिलती थी। उनका समय है दोपहर को 3 बजे, यानी कि अपराह्न लीला है। अपराह्न लीला मतलब मध्यान्ह के बाद, एक प्रहर के बाद में जो लीला होती है उसको अपराह्न लीला कहते हैं। तो अपराह्न लीला में यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी का मिलन होता है, और कई अनंत लीलाएं हैं यहाँ पर। अभी मुझे कृपा सिंधु गौरांग प्रभु बता रहे थे, जो जयपता का महाराज के शिष्य हैं, यहाँ के पुजारी हैं, कि यहाँ पर रात को रेगुलरली घुंघरू की आवाज आती रहती है। ये सिद्ध स्थान है, प्रकट स्थान है, बहुत भगवान की लीला का स्थान है। वैसे यही नहीं, ऐसे कई स्थान ब्रज में हैं जहाँ पर नित्य रूप से भगवान के आने का लक्षण दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे साधारण स्थान नहीं। यहाँ पर आपको दिखेगा कभी गंदगी है, ये वो है, भैंस है, कचरा है, कीचड़ है, आपको लगेगा, लेकिन ये एक बाह्य माया का जाल है जो आपको, जो वास्तव वृंदावन है उससे वो आपको अलग करता है। एक पर्दा है जो दिव्य वृंदावन से आपको अलग कर रहा है। जब आपकी साधना से और हृदय की शुद्धि से हम लोग दिव्य चक्षु प्राप्त करेंगे, हमारे कैंप का नाम क्या है, दिव्य चक्षु यज्ञ। हम लोग केवल कैटरैक निकालना नहीं चाहते, हम लोग कैटरैक के साथ में निकालने के बाद में दिव्य दृष्टि जो है वो लोगों को देना चाहते हैं, भगवान के भजन की दृष्टि, भगवान के दर्शन की दृष्टि। तो जब हम हृदय शुद्ध हो जाएगा, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम का अंजन लगाकर हृदय को शुद्ध करते हुए हृदय के अंदर संत लोग भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तो जब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तब ये जो आपको नजर आ रहा है बाहर से वो नष्ट हो जाएगा और सही वास्तविक वृंदावन का आपको दर्शन होगा। तो वैसे ये स्थली बाह्य दृष्टि से बहुत देहात, गांव, ये वो ऐसा आपको नजर आता होगा, लेकिन वैसे बहुत ही उत्कट और दिव्य स्थली है ये। और यहाँ पर कई संतों ने आके भजन किया है। सबसे पहले आपको यहाँ की लीला संक्षेप में बताते हैं, मैं तो उसके इतने योग्य नहीं हूँ इतनी दिव्य लीला के बारे में और चर्चा करने के लिए, लेकिन जो भी गुरुजनों से सीख सुना है मैंने वो आपको रिपीट करूँगा। तो यहाँ पर राधा रानी जब भगवान को सूर्य रविवार के दिन ऑफिशियली जटिला कुटिला के सम्मति से पूजा की साहित्य लेकर, सामग्री लेकर सखियों के साथ ये यहाँ पर आती हैं, और साथ साथ में जटिला कुटिला भी आने का प्लानिंग होता है कि हम भी आएंगे आपके साथ में। तो यहाँ पर आने के पहले राधा कृष्ण जो राधा है जो अलग जगह जाती है, राधा कुंड में जाती है, वहाँ पर 11:48 की लीला है। वहाँ पर श्याम कुंड के घाट पर राधा रानी स्नान करती है। राधा रानी हर खेल में कृष्ण से हार जाती है, हर खेल में उसको वो हराते हैं। फिर राधा रानी कहते हैं कभी हम पाश खेलेंगे, पाश मतलब क्या कहते हैं उसको, द्यूत, द्यूत उसको क्या कहते हैं, वो सारी पाठ, हाँ चौरस क्या बोलते हैं, चौसर, चौसर तो अपने खेलते ना, वो शकोरी मामा पौ 8 पौ 12 उसको कहते हैं पाशा खेला। पाशा खेला है नहीं, बंगले में कहते हैं पाशा खेला, चौसर का खेल जो है, उसमें राधा रानी कृष्ण भगवान को परास्त कर देती है। और सारे खेल में जितनी पराजय हो गई है उसका बदला ले लेती है। तो ये दोपहर में चल रहा है, तो जैसे ही वो खेल में एकदम कुंदलता और विशाखा और ललिता और धनिष्ठा सब लोग लगे हुए हैं कृष्ण भगवान के विरोध में, और कृष्ण भगवान के साइड में सखा लोग बैठे हैं और वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, और वो बस पता है ना कितना एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर कितने गिरेंगे, छह गिरेंगे कि आठ गिरेंगे, छह चाहिए राधा रानी, छह चाहिए, छे 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 छे, अरे हाँ छे हो गए, अरे बोल इस तरह से बहुत एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर। तो राधा रानी ने हरा दिया कृष्ण भगवान को। अचानक वहां से धनिष्ठा ने आवाज दिया, अरे जटिला आ रही है, जटिला आ रही है, भागो यहां से। तो राधा रानी तुरंत सब कुछ समेट के तुरंत भाग गई वहां से और सूर्य कुंड पे आ गई। तो सूर्य कुंड में जटिला और कुंडला इंतजार कर रही है, कहां गई थी आप? तो कहते फूल बिनने के लिए गई थी, थोड़ा देर हो गई वहां से आते हो तो चलो। वो नहीं, वो उन्होंने कहा कि फूल बिनने गई थी, लेकिन क्या है कि पूजा के लिए आज रविवार का दिन है, सूर्यदेव की पूजा करनी है, तो पंडा भी चाहिए ना उसके लिए, तो पंडा नहीं मिल रहा था आज, तो सभी गोपियों ने सभी पंडाओं को बुक कर लिया सब पंडा जितने भी अवेलेबल थे वो सब बुक हो गए, तो हमें पंडा ही नहीं मिल रहा है। तो हम ढूंढ रहे थे राधा कुंड के किनारे जाके ढूंढ रहे थे कोई पंडा मिलेगा, कि हमने खबर सुनी थी कि कोई दो पंडा वहां पर घूम रहे हैं, एक गुरु है और एक चेला है और घूम रहे हैं वहां पर। तो हम खोज रहे थे उनको और बातचीत कर रहे थे, हम लोग निगोशिएट कर रहे थे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सुना बोल रहे थे कि मैं तो गर्ग मुनि का शिष्य हूं, वो जो पंडा है ऐसे जटिला को जटिला कुटिला को राधा रानी समझा रही है कि देर क्यों हुई मन में है पाशा खेला और बाहर में है कुछ अलग वर्णन तो वो कह रहे थे वो गर्ग मुनि का चेला है और वो बड़ा ब्रह्मचारी है, वो कहता है कि कन्याओं का वो पूजा वूजा मैं करता नहीं हूँ, कन्याओं को देखता भी नहीं हूँ, कन्याओं के हाथ का कुछ खाता नहीं हूँ, ऐसे सब बोल रहा था वो। लेकिन हमने उसको बहुत समझाया कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पंडा होना जरूरी है। तो उसका एक बहुत अच्छा चेला था, बहुत मोटा सा था वो, बड़ा ब्राह्मण का थार जानवी पहन के बड़ा था, वो कह रहा था कि मुझे कोई परहेज नहीं है, मतलब मैं गुरुजी को ले आऊंगा, लेकिन मैं सब स्त्रियों के हाथ का सब खाता हूँ और सब कुछ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी को ले आऊंगा, चिंता मत करना। तो अभी वो आ रहे हैं इसलिए देर हो गई हमको आने के लिए। तो हाँ, ये कन्विंसिंग रीजन था भाई, ठीक है सॉरी। जैसे का अपना होता ना, गणपति बम्बई में होता है तो कोई पुजारी नहीं मिलता है उस समय ब्राह्मण पूजा करने के लिए, तो लोग अभी टेप बजा के गणपति को टेप लेके आते हैं, टेप चलाते हैं और टेप में जो बोलते हैं वैसे विधि करते जाते हैं और फिर पंडा को छुट्टी कर देते हैं। तो वैसे रविवार का दिन है, पंडा वो बहुत हाई डिमांड में है तो वो नहीं मिल रहे, तो वो इसलिए लेट हो गया। तो उनको समझ गया, हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। तो फिर पूजा की तैयारी हो गई और वो बड़े इत्मीनान से, और वो खबर मिल गई कि वो पंडा आने को तैयार नहीं है, तो जटिला ने कहा कि उसको बोलो जटिला देवी उसको बहुत अच्छा उपहार देंगी, रत्न देंगी घर से अपने। तो वो नाटक करते कि उनको बताने जा रहे हैं, बताने जाते हैं, तो फिर कहते कि हमने स्त्रियों के हाथ का हम अलंकार भी लेते नहीं। बोले क्या करें आप बताइए, आप क्या दंडवत करूं आपके लिए, प्रणाम करूं, क्या करिए बताइए। तो कह ठीक है आपकी, मैं केवल प्रेम की दक्षिणा लेता हूं, मैं केवल मेरे जो यजमान हैं जिनका मैं सेवा करता हूं उनसे प्रेम चाहता हूं और प्रेम का ही दक्षिणा लेता हूं, तो मुझे आप पर अभी प्रेम लगने लगा है इसलिए मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं। तो आ गए पंडा जी गर्ग मुनि के शिष्य बनकर, और मधुमंगल जो है मोटे से उनके शिष्य बनकर आए, और उन्हें यहाँ बैठकर, तो यहाँ पर राधा रानी को कहा कि मैं किसी को स्पर्श नहीं करता लेकिन मैं संकल्प करने जा रहा हूँ। तो ये कुश जो है, कुश यानी कि वो घास होता ना हम लोग यज्ञ में वापरते उसको, वो वराह देव के पृथ्वी को अपनी कक्षा पर रखने के बाद में उन्होंने जल से आए थे ना वो, तो उन्हें शरीर को ऐसे ऐसे हिलाया था अपने, जैसे सुवर कैसे करता है पानी में आने के बाद में ऐसा स्प्रे, डिवाइन स्प्रे, ऐसे भगवान ने वराहदेव ने अपना दिव्य जो स्प्रे है छिड़कावा कर दिया पूरा। तो जहां जहां उनके रोम गिरे वहां से कुश का निर्माण हुआ, इसलिए वो कुश जो है कुश घास उसको यज्ञ में उपयोग करते हैं। जहां जहां उनका पसीना गिरा वहां से काला तिल का उगम हुआ, और काला तिल भी हम लोग पूजा में उपयोग करते हैं। तो कहते हैं कि वह कुश जो है इसको मैं स्पर्श करता हूं तो मेरा चेला ये कुश पकड़ेगा, और उस कुश को पकड़ के आप संकल्प कीजिए, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता। तो ऐसे करके उन्होंने संकल्प किया, तो जटिला देवी बोले थे बहुत बड़ा पंडा है ये, बहुत मतलब इतना नियम का पक्का है, वाह ब्रे हमारा कितना भाग्य है, सब पंडा लोग बुक हो गए लेकिन हमको ये सबसे श्रेष्ठ पंडा मिला, बहुत बढ़िया बात। उनको सब गोपियों ने और ग्वाल वालों ने बहुत सुंदर ब्राह्मण बनाकर भेज दिया था यहाँ पर, मुरली वुरली छुपा कर उनकी उनका ट्रेडमार्क है ना, मुरली जहाँ जाएगी वो पहचान देगी ये कन्हैया है, तो मोर पंख वगैरह निकाल के सब कुछ करके अच्छा ब्राह्मण बना के उसको भेज दिया था उसने। तो जटिला भी पहचान नहीं पाई उसको। फिर पूजा वूजा बढ़िया से सूर्यनारायण की उन्होंने, और आशीर्वाद मांगा कि राधा रानी को बड़ा अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि सूर्यनारायण जो है वो स्वास्थ्य देने वाले हैं, सूर्यनारायण का सेवा है, वो आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। लेकिन वो ब्रज के बाहर केवल आरोग्य देते हैं, ब्रज में कृष्ण के चरणों की भक्ति भी देते हैं। ब्रज में यहाँ पर जो विराजमान है सूर्यनारायण के रूप में, वो राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति सबको प्रदान करते हैं। इसलिए आप जब जाएंगे तो उनसे राधा कृष्ण की चरणों की भक्ति भी प्रदान करना, मतलब प्रदान करने की विनती करना। तो बड़ी सुंदरता से पूजा हो गई, तो एक एक विधि के बाद में एक एक राधा रानी का एक हीरे का अंगूठी दिया, तो कृष्ण ने कहा हम नहीं छूते हैं, तो मधुमंगल ने कहा हम ले सकते हैं, तो ले लिया उन्होंने। नहीं नहीं ये तो मेन पंडा को देना चाहिए, तो बोले कि ये काम करो आप, उसको खाली एक उंगली लगाओ, स्पर्श करो और स्वीकार करने की विधि करो, फिर वो मुझे दे देना, फिर मैं ले लूँगा उसको। ऐसे हर एक विधि के बाद में एक एक अलंकार, गले का हार, अंगूठियाँ, हीरे की अंगूठियाँ, ऐसे करते करते बहुत सारा अलंकार दक्षिणा में प्राप्त हुआ। गायों को भी दान दिया गया, और उन्होंने कहा कि अभी हमारी पूजा हो गई तो उसका प्रसाद आपने चढ़ाया हो उसका भोग करके जाइए आप। बोले नहीं, केवल मैं, मेरी बहन जो है गार्गी, हाँ, पूर्णमासी ने राधा रानी के जन्म की लीला उसको बताई थी, गार्गी को, वो जो गार्गी मेरी बहन है उसी के हाथ का मैं फलाहार करता हूँ बस, और कुछ नहीं खाता, तो मैं भोजन भी नहीं कर सकता आपके यहाँ। मतलब वो कहीं भी जटिला को कहीं भी डाउट ना आ जाए कि मैं कौन हूँ, इसलिए सारे नाटक कर रहे थे। पूरी पूजा करने के बाद में फिर जटिला बहुत प्रसन्न हो गई, कहती कि मैं आपको लाइफ टाइम बुक करूँ क्या कैन आई बुक यू फॉर लाइफ टाइम, ऑल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऑल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कहते कि मैं सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन ज़्यादा मुझे रुचि नहीं इसमें, क्योंकि मैं कन्याओं के पंडागिरी में मुझे रुचि नहीं है। मतलब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल, यू नो, डोंट थिंक आई एम फ्री अवेलेबल। तो फिर वो चले जाते हैं, राधा रानी का पूजा होने के बाद में जटला कुटला चले जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान अपना भेष बदलते हैं और राधा रानी को यहाँ एकांत में बहुत देर तक मिलते हैं। इस तरह की यहाँ की लीला है रविवार की। आज कौन सा वार है? आज शनिवार है। कोई बात नहीं, शनिवार रविवार ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल 8 प्रेयर का अंतर होता है। एक 8 प्रेयर के बाद में फिर रविवार हो जाता है। और अभी हम लोग ऑलरेडी 1, 2, 3 प्रेयर तो हो चुके हैं, अभी केवल 5 प्रेयर बाकी हैं, फिर रविवार आरंभ हो जाएगा। लेकिन आते हैं 3 बजे, मतलब अभी 9 प्रेयर के बाद में वो आएंगे कल यहाँ पर लीला करने के लिए। और यहाँ की लीला ऐसी है कि ये जो है ये सूर्य कुंड है, जहाँ जहाँ पवित्र स्थान होता है वहाँ पर जलाशय होता है भगवान की लीला। ये जो जलाशय है, ये वृक्ष है, ये सभी यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान की नित्य लीलाओं को अवलोकन कर रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग दी डिवाइन पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। और वो लीला का जो सार है, जो भाव है लीला का, उसको वो ग्रहण करते हैं। और हम लोग जब ऐसे स्थानों में आते हैं तो ये वृक्ष बड़ी कृपा से, एक सुंदर सरोवर बड़ी कृपा से उस भाव को हमको देते हैं। हमको पता नहीं अभी क्या हो रहा है हमारे आत्मा में, जैसे कि वो ऑपरेशन के पहले होता है ना, वो बेहोश कर देते हैं लोगों को, करते हैं ना बेहोश, ताकि दर्द ना हो, आपको पता नहीं चले कि अंदर क्या हो रहा है। आपको इंजेक्शन देके बेहोश किया, जब होश में आए तो अंदर का पता नहीं कितना ऑर्गन यहाँ से वहाँ कर दिया, कितने अवयव यहाँ से यहाँ निकाल दिए, लेकिन दर्द वाले, कष्ट वाले जो पीड़ाएँ हैं सब वो खत्म हो जाती, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। वैसे ही हम लोग सभी अभी भगवान की कृपा के एनेस्थेशिया के अंडर है। वी ऑल आर लाइक अंडर द डिवाइन एनेस्थेशिया स्पेल ऑफ कृष्णा एंड वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू आवर सोल, बट ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग टू आवर सोल, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस, ग्रेट प्यूरिफिकेशंस विदाउट एनी पेन, ग्रेट नरिशमेंट, ग्रेट एनरिचमेंट इज हैपनिंग एट स्पिरिचुअल लेवल विदाउट कॉग्निशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये आपको विश्वास होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बैठना भी एक बड़ी दिव्य क्रिया है, यहाँ पर आना भी एक बड़ी दिव्य क्रिया है। इसलिए यहाँ पर आना और बैठने के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। 3 बार बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, इन ग्रैटिट्यूड टू श्री कृष्णा एंड राधा रानी। तो इस सूर्य कुंड में राधा रानी आती है अपनी सामग्री को लेकर, तो सबसे पहले स्नान करती है सूर्य कुंड में। तो एक बार वो जो आई स्नान किया तो उसने अपना जो मुकुट है उसको उतार के एक शिला पर रख दिया। लेकिन यहाँ का जो हर एक वस्तु है ना यहाँ की, वो चेतन है। एवरी आइटम हियर इज लिविंग, मतलब पत्थर भी, लकड़ी भी, बिल्डिंग भी, हाँ जो भी आपको लगता है जड़ है, यानी कि जो मटेरियल है, वो भी चेतन है। यहाँ पर यहाँ के रज भी जीव है, जीवित है, तो शिला भी जीवित है। तो जिस शिला पर राधा रानी ने अपना मुकुट रखा, वो शिला रोमांचित हो गई, भाव विभोर हो गई और पिघल गई, और जो मुकुट था उसके अंदर ऐसे घुस गया, और उस मुकुट का जो दिव्य चिन्ह है वो शिला पर आया। बड़ी समझने, मतलब बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कैन हैपन। हमारे पास कोई प्रक्रिया है क्या? इज देयर एनी प्रोसेस बाय विच यू कैन मेल्ट द स्टोन्स इन योर साइंस, इन योर मोस्ट एडवांस्ड इंग्लिश, यूरोपियन, अमेरिकन साइंस? इज देयर एनी टेक्निक बाय यू कैन मेल्ट द स्टोन्स? लेकिन यहाँ पर तो आए दिन पत्थर पिघलते रहते। हरे कृष्णा ने मुरली बजाई तो पत्थर पिघल गया, हरे कृष्णा ने मुरली बजाई खड़े हो गए तो पाँव के स्पर्श से पिघल गया, हाँ अरे मुकुट रखा तो पिघल गया। कॉन्स्टेंट एक्टिविटी ऑफ मेल्टिंग। और वो ही नहीं, पत्थर ही नहीं पिघलते, आदमी भी पिघल जाते हैं कई बार, लीलाओं में वर्णन आता है। पिघल गए, खड़े खड़े ही पिघल हो गए और नष्ट हो गए, वहीं समर्पित हो गए पूर्णता से। तो वो पत्थर जहाँ पर मुकुट रखा गया था वो पिघल गया। राजा रानी लौट के आई तो मुकुट लिया, तो मुकुट का चिन्ह जो है उस पत्थर पर निकला था। तो वो शिला यही किनारे पे थी कुंड के, और वो किनारे के कुंड पे उसका नाम मुकुट शिला है, वहाँ पर वो विराजमान थी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि संतों की भजन स्थली भी है, तो यहाँ पर गौड़िया संप्रदाय के बड़े मशहूर और बड़े प्रसिद्ध और बड़े श्रेष्ठ बाबा यहाँ पर निवास करते थे, भजन करते थे। उनका नाम था परम पूज्य मधुसूदन बाबा जी महाराज। उनको उस नाम से कोई जानता नहीं, उनको कहते सिद्ध बाबा, मतलब वो सिद्ध योगी नहीं थे, चमत्कारी योगी नहीं थे, लेकिन वो भक्ति में सिद्ध हो गए थे। तो आपको वो नजर आ रहा है वहाँ पर जो वाइट मंदिर है, देखो तीन जगह दिखाई पड़ रही है आपको, बीच में एक घुमट वाला जगह है, वो कुंड के घाट के किनारे पे है बीच में, उसके आगे एक वाइट मंदिर है जो पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आपको। और ये जो बीच में जो घुमट वाला मंदिर है उसके बाजू में और एक स्ट्रक्चर है वाइट रंग का, तो वो जो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो मधुसूदन बाबा का समाधि स्थल है। वहीं पर रह के उन्होंने भजन किया था, वहीं पर जो शरीर छोड़ा था उनकी समाधि वहाँ बनाई गई। बीच का स्थान जो है भोले बाबा का मंदिर है, शंकर जी महाराज का, और उसके बाजू में जो जगह है वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की भजन कुटी है, और उसमें और एक महाराज की भजन कुटी भी है जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के संन्यास गुरु थे, उनका भी भजन कुटी और समाधि वहाँ पर है। और पीछे एक जगह है दिखाई पड़ रहा है आपको, एक गोपाल जी महाराज थे यहाँ पर, उनको राधा रानी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था, वो उनका समाधि स्थल है। तो बहुत उत्कट स्थान है। तो मधुसूदन बाबा जी को स्वप्न में राधा रानी ने कहा कि मेरी शिला, मुकुट शिला यहाँ पर है, उसको आप अच्छी तरह रखिए, उसका भजन पूजन करो। तो उन्होंने कहा मैं तो कैसे आपकी लीला में समझ सकता हूँ कहाँ पर है, जो दिखाई नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा रोज आप स्नान करते हो ना, उसी जगह पर है वो, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जब आप जाओगे अभी दोबारा तो आप जहाँ पर स्नान कर रहे हो करोगे वहीं पर आपको वो शिला प्राप्त हो जाएगी, उसको कुंड से निकाल कर आप अच्छी जगह रख के उसका भजन पूजन करना रोज। तो अगले दिन जब मधुसूदन बाबा ने स्नान के लिए प्रवेश किया तो उसी जगह उनको शिला मिली, और वो शिला उठाई और उन्होंने, उनका जो समाधि मंदिर है उसी में, उनके समाधि के एकदम सामने वो मुकुट शिला को स्थापन किया है, उसका मंदिर बनाया गया है, वो समाधि के ऊपर ही है। वो समाधि सबके सामने राधा गिरधारी का मंदिर है, समाधि के ऊपर वो दीवार में उस शिला को भी फिट कर दिया है, बहुत सुंदर, उसमें राधा रानी के मुकुट का चिन्ह है। तो अभी आप जाते हैं उसको देख सकते हो, बहुत ऐसे जाके चल के दर्शन कर सकते हो। और ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी हैं हमारे, वो ठाकुर भक्ति विनोद के शिक्षा गुरु थे। ठाकुर भक्ति विनोद के गुरु महाराज जो थे वो उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन जो उनके शिक्षा गुरु, यानी कि बहुत सारा जीवन का समय उन्होंने उनके साथ में, उनके उपदेश में बिताया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने यहाँ पर बहुत साल भजन किया, लेकिन जब यहाँ पर एक घटना हुई, उस घटना का संक्षेप में आपको वर्णन करता हूँ। वो घटना हुई यहाँ पर नहीं, एक आगे गांव है जो कोसी के रास्ता पर हैं, बरसाने के पास में है, उसका नाम है रणवारी नाम है उसका, रणवारी। उस रणवारी नाम के जगह पर कामदेव और कृष्ण का आमना सामना हुआ और कामदेव ने कृष्ण भगवान पर बाण चलाना चाहा और कृष्ण को भी काम भावना में वश करना चाहा। तो उसमें काम भावना को प्रभावित करने के प्रयास में युद्ध हुआ उनका, कृष्ण भगवान का और कामदेव का। भगवान ने कामदेव को वहाँ परास्त कर दिया, उस रण में कामदेव को भगवान ने परास्त कर दिया, तो उसका नाम है रणवारी। तो उसी जगह पर जगन्नाथ बाबा जी यहाँ के इसी के आसपास, मतलब यहाँ कभी वहाँ भजन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक भक्त थे, उनको साक्षात राधा रानी के दर्शन हुआ करते थे, तो वो भी वहाँ रहते थे। तो एक दिन राधा रानी ने उस भक्त को आदेश दिया कि तुमको कभी ब्रज छोड़ के जाना नहीं है। फिर भी एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या विचार आया, वो ब्रज छोड़ के चला गया। तो जब लौट के आया ब्रज में तो उसके सारे अंग जलने लगे, उसके हर अंग को आग लगने लगी और उसको अनुभूति हुई कि मैंने राधा रानी का आदेश नहीं माना, इसलिए इसके मतलब गुरु आज्ञा या भगवत आज्ञा को उल्लंघन करके मैंने कुछ करने का प्रयास किया, इसके वजह से मेरा सारा बदन आत्मा मेरी जल रही है, ऐसा उसको अनुभूति हुई। और उसका कष्ट देखकर जगन्नाथ दास बाबा जी निर्णय किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं गौरांग महाप्रभु के धाम में जाऊँगा। क्योंकि ब्रज में और मायापुर में एक मुख्य अंतर ऐसा है कि ब्रज में धाम अपराध का बहुत कठिन और बहुत कठोर दंड मिलता है। ब्रज में वैष्णव अपराध, धाम अपराध, भगवत अपराध, इस सबका बहुत भयंकर दंड मिलता है। और वो दंड जो है उस वक्त के जीवन में देख रहे थे कैसे तड़प रहा था वो, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूँगा। और जगन्नाथ बाबा जी ने फिर यहाँ से मायापुर धाम में प्रयाण किया और वहीं पर उनका कुलद्वीप यानी कि नवद्वीप आज का जो सिटी है वहाँ पर उनका भजन कुटी है और वहाँ पर उनका समाधि मंदिर भी है। और वो 144 साल तक जिए और उन्होंने ही गौरांग महाप्रभु के धाम में गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान प्रकट किया। तो वो जगन्नाथ दास भाई बाबा जी महाराज यहाँ पर उन्होंने भजन किया था। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है। और यहाँ की एक और लीला है, क्योंकि जो हमने आपको लीला बताई वो एक ही लीला नहीं, यहाँ पर रोज लीला होती है, अनंत लीला होती है, उसका कोई था नहीं पकड़ सकता। नोबडी कैन कैच द लिमिट्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द वैरायटी ऑफ द अनलिमिटेड पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। दूसरी लीला यहाँ की ऐसी है कि एक रविवार को जब राधा रानी यहाँ पर कृष्ण भगवान से मिल रही थी सूर्य भगवान की पूजा के बहाने, तो हुआ ये कि वो इतने मग्न हो गए एक दूसरे से बात करने के लिए, तो अचानक धनिष्ठा ने या सखी ने आकर बताया जटिला आ रही है, जटिला आ रही है, तो भागने को भी समय नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया होगा, कृष्ण भगवान सूर्यदेव बन गए और राधा रानी उनके पूजन करने लगी और जटिला को खबर मिल गई थी कि आज कृष्ण भगवान राधा रानी को पक्का मिल रहे हैं, मुझे खबर है इस बात की और मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी आके उनको। तो बड़े भाग भाग के आके देखी तो राधा रानी बड़े प्रेम से सूर्यदेव का पूजन कर रही है और सूर्यदेव खड़े हैं। कई जगह पर वो देवी बने, हाँ वो गौरी का पूजन करने के लिए भेजती थी उनको, ताकि जटिला को ये विश्वास था कि गौरी का पूजन करेंगे तो अभिमन्यु का आयु बढ़ेगी, अभिमन्यु स्वस्थ रहेंगे, अभिमन्यु धनवान बन जाएंगे, इसलिए वो गौरी का पूजा करने के लिए उनको भेजती थी। और कई बार पीछा करती थी उनका, अरे गौरी को मिलने बहाने गौरी के मंदिर में कृष्ण भगवान से मिल रही है, तो भाग भाग के आती थी और दरवाजा बंद करके लोग बात करते थे, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसती थी तो अचानक राधा रानी देवी का पूजन कर रही है और कृष्ण भगवान देवी बने हुए हैं। फिर जोर से चिल्लाते हैं कि मैं जानता हूं तुमने बहू को बड़ा कष्ट दे दी है, जानती हूँ, सॉरी आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहू को बड़ा कष्ट देती है और मैं ये देख रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको चेतावनी दे रही हूँ कि अभिमन्यु को मारने के लिए कंस के सिपाही आ रहे हैं तलवार लेकर और बहुत ही कम समय में उसका सर उड़ा देंगे वो। तो माता एकदम व्याकुल हो गई, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, माफी चाहती हूँ, मैं कभी मेरे बहू को कष्ट नहीं दूंगी, बताओ क्या करना चाहिए। बोले कभी भी उनका पीछा नहीं करना चाहिए। उस पर संशय नहीं करना चाहिए। वो सबसे बड़ी पतिव्रता यानी कि क्या कहते हैं उसको, चेस्ट, शी इज अ वेरी मोस्ट चेस्ट लेडी ऑफ होल वृंदावन भूमि, आप उस पर शक नहीं करना चाहिए। उनके जैसी पतिव्रता कोई कन्या नहीं है पूरे ब्रज में। तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो कंस के सिपाहियों से आपको कोई डर नहीं। तो वैसे यहां पर आई वो, तो भगवान यहां पर सूर्य नारायण बने हुए हैं। तो ये सूर्य नारायण है, ये सूर्य नारायण भी है और कृष्ण भी है। हाँ आप दोनों को समझ के उनको प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा अनोखा ये स्थान है, यहाँ पर आप हृदय से प्रार्थना कीजिए कि भगवान की जो अंतरंग लीला है वो सबके लिए प्रस्तुत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे बुद्धि न होने वाले मूर्ख लोगों को भी, पापी लोगों को भगवान यहाँ प्रवेश देते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ का संग देते हैं, आनंद देते हैं, हृदय की शुद्धि प्रदान करते हैं। तो हम लोग को बहुत ऋणी रहकर, कृतज्ञ रहकर सूर्य भगवान से प्रणाम करना चाहिए, जल का आचमन करना चाहिए। भगवान के बहुत अनोखे चटपटी लीलाओं से ये द्रव्य जो है वो संपृक्त है। द वॉटर ऑफ दिस कुंड इज होली फुल्ली सैचुरेटेड विद द एसेंस ऑफ द डिवाइन मिस्टीरियस पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड राधा एंड कृष्ण। जय जय श्री राधे। श्याम, हमारे परम पूज्य सचिनंदन महाराज यहाँ पर आके कार्तिक का व्रत करते हैं। अभी वो गौर पूर्णिमा को आने वाले हैं और कभी कभी अपना पूरा कार्तिक का 40 दिन का जो व्रत है वो यहीं पर करते हैं। मतलब एक बार थोड़ा सा फलाहार करते हैं और दिन भर पता नहीं कितनी सैकड़ों माला जप करते हैं, बताते नहीं वो, और यहाँ रहते हैं और कार्तिक में भगवान का पूजन करते हैं। तो आप सबका धन्यवाद है, आपने हमको यहाँ पर अपनी सेवा करने का मौका दिया। हरे कृष्णा, सब लोग पुकारिए एक बार आंख बंद करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।